الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تیسواں پارہ شروع کر رہے ہیں. یہ پارہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اسی پارے کی اکثر صورتیں ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں. اسی طرح یہ صورتیں مختصر ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ان کے اندر معنی بہت بلیغ ہیں. یہ تمام مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتیں نزول کے اعتبار سے پہلے نازل ہوئیں اور بعد میں مدنی صورتیں نازل ہوئیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے. مکی صورتوں کا اسلوب ڈفرینٹ ہے مدنی صورتوں سے. خاص طور پہ اس پورے پارے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک ٹاپک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے گرد یہ پارا گھومتا ہے، وہ ہے آخرت، قیامت اور اس کے احوال. لہذا اس پارے سے آپ قیامت کے بارے میں بہت ساری باتیں معلوم کریں گے، اور دل کو نرم کرنے والی، واعظ و نصیحت والی آیات آپ کو ملیں گی. احکامات اے سچ اس میں نہیں ہیں، کوئی حکم نہیں دیا جا رہا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اس کے برعکس دل کی زمین کو نرم کیا جاتا ہے تاکہ انسان عمل کے لیے تیار ہو سکے، عمل کے لیے کوشش کر سکے، نیکیوں میں دوڑ سکے. تو اس پارے کی پہلی سورت سورۃ النبا ہے، جو کہ مکی سورت ہے. یہ بھی دو رکوعات پہ مشتمل ہے، اور اس کا نام، اس کی دوسری آیت عن النبا العظیم اس سے لیا گیا ہے. نبا اہم خبر کو کہتے ہیں. امام بحقی نے اپنی سنن میں روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کتنی قرات کرتے تھے، تو حضرت انس نے اپنے بیٹے سے کہا، انہوں نے ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی اور نماز میں المرسلات اور نبا پڑھی. تو یعنی کتنی قرات کرتے تھے اس سے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، اور میں ایک رکعت میں مرسلات اور ایک میں اما یتساءلون یہی والی سورت پڑھی. تو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظہر اور عصر کی رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے. آپ بھی چاہیں تو ان سورتوں کو یاد کر لیں، اور ترجمے کے ساتھ یاد کرنا آسان ہے. تو آج آپ ترجمہ بھی سیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس سورت کو ہم سمجھیں گے بھی کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. اس سورت میں جو پہلی پانچ آیات ہیں، وہ تو جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے سوالات کرتے تھے. اس کے بعد 11 آیات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کرتی ہیں، آیت نمبر 16 تک. یہ 11 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد قیامت کے دن کی جو افراتفری ہے اور جو اس دن کے حالات ہوں گے ان کو بتایا گیا ہے، آیت نمبر 20 تک. اور آیت 21 سے لے کر 30 تک جہنم کی بات، اور وہاں کے جو مشروب ہیں اور وہاں پہ جہنمیوں کا کیا حال ہوگا، وہ ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جنت والوں کا ذکر ہے، آیت نمبر 31 سے. اور آخر میں आयत 37 से लेके एंड तक मैदाने माशर का मंजर पेश किया गया। तो ये कुछ मुख्तसर सा तारुफ इस सूरत का आपके सामने है। इससे आपको अंदाजा होगा कि आपने आज क्या पढ़ना है, क्या समझने के लिए आप बैठे हैं। तो बहुत सीरियस आयात हैं, ना तो इनके अंदर कोई हंसी मजाक है और ना ही कोई ऐसी कोई बात जिसके ऊपर आप सोचें कि बहुत इंसान कहे मैं बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। और जैसे दुनिया में कई ऐसी बातें होती हैं कि इंसान उनको लेजरली सुनता है, बस ऐसे ही के सर से गुजार देने वाला, तो इस तरह का जिक्र नहीं है। दिल पे लेने वाली आयात है, लिहाजा इसमें फोकस बहुत ज़रूरी है, तवज्जो बहुत ज़रूरी है। और अपने दिल की ज़मीन को नरम करने के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं तफसीर सूरतुन्नबा मक्किया की। अम्मा यतसाअलून, अम्मा किस चीज़ के बारे में, यतसाअलून वो एक दूसरे से सवाल करते हैं। यतसाअलून बाब तफाउल से है जिसमें दो माने होते हैं, एक तो एक दूसरे के साथ कोई काम करना और दूसरा इसमें मुबालगा होता है, बहुत ज्यादा वाली एग्जेजरेशन। तो एक तो ये पता चलता है कि वो ये किसके बारे में बात हो रही है, या तो काफरों के बारे में बात हो रही है कि आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा सवाल करते थे, या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके बहुत ज्यादा सवालात करते थे। तो यानी दो लोग आपस में जो सवाल जवाब होता है उसके ऊपर बात हो रही है। तो किस चीज के बारे में, यानी ये आपस में सवाल कर रहे हैं और मुबालगा है, तो चाहे बहुत ज्यादा इनके दरमियान आपस में बात हो रही है इस पे। यानी इससे पता चला कि एक ही टॉपिक उनके पास रह गया था, हर वक्त जब एक दूसरे से मिलते थे तो यही बातें करते थे, आज क्या कहा है उन्होंने, आज क्या उतरी, ये कैसे होगा, ये अजाब कहाँ से आएगा, आएगा तो फिर अभी तक आया क्यों नहीं। यानी हर वक्त इनकी एक ही बात चलती रहती थी, कभी मुसलमानों से पूछते थे, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की बातें करते थे, कब आएगी ना कयामत, ले आए ना वो अजाब जिसकी आप हमें धमकियां देते रहते। तो एक तो सवाल होते हैं देखें पूछने के अंदाज में, कि इंसान ने किसी से सवाल इसलिए किया कि वो उसके बारे में जानना चाहता है, मगर एक होते हैं तंजिया सवाल, वो फिर आज क्या नई बात है, सुनाओ फिर आज क्या खबर है। तो ये वाला इस किस्म का जो सवाल है ना, वो समझने के लिए नहीं है, इल्म लेने के लिए नहीं है, बल्कि किस लिए होता है, ताकि दूसरे की तहकीर करें, मजाक उड़ाएं। ये भी एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स होते हैं दूसरे को लेट डाउन करने के लिए। तो ये कोई इसलिए सवाल नहीं कर रहे थे कि इनको कुछ जानना था, कोई इनको अमल करना था, बल्कि सवालात की बौछार करते थे सिर्फ इसलिए ताकि मजाक उड़ाएं। और किस बारे में, आनिन नबअल अज़ीम, उस बड़ी खबर के बारे में, ये बड़ी खबर कौन सी है। बाज ने कहा कि इससे मुराद कुरान है, बाज ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत है, लेकिन असल ज्यादा जो कवी दलील है वो यही है कि क्योंकि आगे आखरत का जिक्र आ रहा है, तो कयामत के बारे में सबसे ज्यादा इनको यानी ऑब्जेक्शन था कि कैसे हो सकता है कि हड्डियां गली सड़ी दोबारा फिर खड़ी हो जाएं, कैसे हो सकता है कि हम सब उठाए जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। यानी इसके बारे में उनको बड़ी ही तश्वीश रहती थी, या कहें कि बड़ा जो मजाक उड़ाने के लिए जो पॉइंट था ना उनके पास, वो सबसे ज्यादा यही था। और नबा कहते हैं बड़ी खबर को, जिसको आज अगर आप देखें ना तो वो वाली जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती, एक तो न्यूज़ वैसे ही आप सुनते हैं, ये भी न्यूज़ है, वही वजीर आजम सदर से मिले, फलां फलां से मिला, फलां विजिट करने आ गए, ये भी न्यूज़ है, इसको खबर कहते हैं। लेकिन खबर और नबा में फर्क होता है।
नबा वो होती है जो इतनी बड़ी खबर हो कि उसके अंदर एक्शन उसके बाद दरकार, यानी उसके बाद कुछ चेंज आता है, कोई रिएक्शन होता है उसका। यानी जैसे अल्लाह ना करे कि ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि फलां जगह आग लग गई है, ये जंग शुरू हो गई है, या कहीं से हमला हो गया, तो ये नबा है और ये एक बड़ी खबर है जिसको आज के वक्त के अंदर ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। तो नबा के अंदर ही ये माना है, लेकिन उसके बाद जब कह दिया गया अल अज़ीम बड़ी, तो आप सोचें उसके माने में कितनी शिद्दत आ गई कि पहले ही बड़ी खबर है, यानी बहुत वाकई बड़ी खबर। और देखें कोई भी चीज कितनी बड़ी है, ये उस चीज से तो नहीं इतना शायद पता चले, बताने वाले से पता चलता है कि कौन बता रहा है। देखें एक बच्चा आपको मसलन कहता है कि मसलन है कि बाहर आग लगी हुई है, तो आप उसकी बात को देखें लेकिन इतनी तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन अगर टीवी पे आना शुरू हो जाए और वो ब्रेकिंग न्यूज़ देना शुरू हो जाए तो आपके लिए वो बड़ी हो जाती है। इसी तरह एक बच्चा कहता है मिसलन, एक और मिसाल समझे, बच्चा कहता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो आपके जहन में कितने पैसे आएंगे, 1,000 हो गया, 100,000 ज्यादा सादा इतने होंगे इसके पास। लेकिन अगर एक बादशाह कहे कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो आपके जहन में क्या आएगा, 100,000 नहीं आएगा, मिलियन बिलियन आएंगे। किस चीज ने फर्क डाला, बात सेम ही है, वो भी कहता है मेरे पास बहुत पैसे हैं, वो भी कहता है मेरे पास बहुत पैसा है, बात है किसने कहा और यहाँ पे कहने वाला कौन है, अल्लाह सुबहाना ताला, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब खुद फरमा रहा है कि ये बड़ी खबर है, बहुत अजीम खबर है, तो फिर इसका मतलब कि वाकई वो बड़ी खबर है और ऐसी खबर है जिसके बाद एक रिएक्शन मतलूब है, ऐसे नहीं कि उसके बाद भी इंसान बैठा रहे। तो ये वाकई अजीम चीज है, ये छोटी बात नहीं है जिसके बारे में ये आपस में चहमगोइयां कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं या इसको सीरियस नहीं ले रहे, और ये इनके सवालात भी कैसे हैं कि इतनी बड़ी खबर के बारे में ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल इंसान इसको सोच भी नहीं सकता कि इस बात के ऊपर इतनी बातें और इतना तमस्कर, क्योंकि ये तो लॉजिकल बात है। ऐसे ही है जैसे एक उस्ताद सारा साल पढ़ाता रहे और बच्चा पूछे उससे कि क्या इसके बाद इम्तिहान भी होगा, जाहिर है होगा, अगर वो एफर्ट कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो पढ़ा रहा है, वो सिखा रहा है, तो देखेगा तो सही ना कि किसने सही समझा और किसने नहीं समझा, कौन कितने पानी में। तो वो रब्बुल इज्जत जिसने इतनी नेमतें दी इंसान को, क्या वो इसके बाद देखेगा नहीं कि इंसानों ने इन नेमतों को पा के मुनइम को, नेमतें देने वाले को कितना पहचाना और कितना याद रखा और कितना उसका हक अदा किया। तो लॉजिकल बात है, लेकिन ये इसके बारे में, ऐसी चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं और किए चले जा रहे हैं, अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, जिसके बारे में ये मुख्तलिफ हैं, इनकी हर एक की अपनी ही राय है, अपना ही ओपिनियन बनाया हुआ हर एक, यानी सारे काफिर भी एक पेज पे नहीं थे आखरत के बारे में, सब अपने अपने ओपिनियंस रखते थे। कोई यह समझता था कि कैसे हो सकता है भुरभुरी हड्डियां फिर से खड़ी करी जाएं, कोई समझता था कि ओ हम तो अगर मर भी गए तो फिर दोबारा हम इसी हालत के अंदर जैसी हमारी आज की हालत है, यानी हम इतने अमीर हैं और इतने हमारे पास नेमतें और सरदारियां इसी तरह वहां होंगी। तो आखरत के बारे में जो इख्तलाफ है ना, इसको समझने की जरूरत है। जब इंसान कहता है ना कि वो आखरत का इनकार करते थे, तो इनकार सिर्फ ये नहीं होता कि कोई ये कहे कि मैं आखरत को नहीं मानता, मैं कयामत को नहीं मानता, और कैसे हो सकता है कि मर खप के लोग आज तक तो जिंदा हुए नहीं, तो कैसे हो सकता है कि उस वक्त जिंदा हो जाए। ये तो ठीक है, ये तो एक इनकार है ही, क्योंकि ये तो साफ ही तौर पे इनकार है ना, लेकिन इनकार करने के और भी कई तरीके हैं जिसमें से बाज हमारे यहां भी राइज हैं, वो कौन से तरीके हैं?
कैसे इनकार किया जाता है? इनकार का एक तरीका और ये भी है कि इंसान ये सोचे कि वहां पे तो मुझे छुड़ा लेंगे, मेरे सिफारशी हैं वहां पे, और बस वहां पे कुछ नहीं होना, कोई जहन्नुम वगैरह और ये वगैरह कोई बात नहीं है, बस ये तो ऐसे ही इन्होंने बातें बनाई हुई हैं मौलवियों ने डराने के लिए, वरना हमारे तो फलां हैं, उनका दामन पकड़ के हम चले जाएंगे, बहिश्ती दरवाजे से हम गुजर गए तो अब हमारे लिए तो बहिश्ती है, हमारे लिए तो जन्नत ही है, अब क्या हमें तो जहन्नुम क्यों छुएगी, हमारे तो सिफारिशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारी सिफारिश कर लेनी है, या हमारे तो फलां औलिया अल्लाह, फलां वली अल्लाह, फलां ये हमारे पीर, हमारे फलां वो इतने पहुंचे हुए हैं कि वो उस दिन हमें बचा लेंगे, और इसीलिए आज हम इनके मज़ारों के ऊपर चादरें चढ़ाते हैं, इनको हम मतलब इनके आगे इतने देगे वहां पे देते हैं, तो जाहिर है ये हमारे वहां पे हेल्प करेंगे, ये भी आखरत को झुठलाने के बराबर ही है, आखरत के इनकार के बराबर भी है। और एक और बात भी कि इंसान ये कहे, ये सोचे कि हम तो बहुत बड़ी उम्मत हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते हमें वहां पे कोई पूछ नहीं होगी, हमें वहां पे कोई नहीं पकड़ेगा, हम जाहिर है एक लाडली उम्मत है, तो इस लिहाज से भी कोई अगर ये समझता है कि मैं वहां पे छूट जाऊंगा और मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं होगा, तो ये भी एक तरह से आखरत का इनकार करने के बराबर ही है, क्योंकि जब इंसान ऐसे सोच लेता है ना, तो उसके बाद यानी वो चीजें, ये जो सारी आयात बताई जा रही हैं, जो सारी जहन्नुम का जिक्र और ये सब है, ये तो बिल्कुल लायानी हो जाता है, बेमाना हो जाता है, इसका कोई माना नहीं रहता, जब कयामत पे पता ही है कि वहां पे सबने ही चले जाना है, तो फिर इसका क्या माना रहेगा। तो इसी तरह यहूद का भी मामला था ना, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कितनी जगह पे उनको कंडेम किया है कि वो बुराइयां करके उसके बाद क्या सोचते हैं कि हमें तो जहन्नुम की आग छुएगी नहीं, और अगर छू भी लिया तो चंद दिन के लिए, बस ऐसे जरा सा टच करेगी, दैट्स इट। फिर बाज लोग ये भी सोचते हैं, एक और तरीके से भी झुठलाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि जैसे हम दुनिया में है ना, इसी तरह हम आखरत में होंगे, यानी हमारे पास यहाँ पे जब जिस रब ने हमें यहाँ पे इतना दिया है वहां पे भी दे दे, इतनी दौलत और इतना तायुशात, इतनी आसाइशें, इतनी लग्जरीज में रहते हैं, वहां पे भी हमें कुछ नहीं होना, इसी तरह मैं बेगम साहिबा बनी होंगी और इसी तरह मेरे आगे पीछे नौकर होंगे। तो ये भी एक तरीका है झुठलाने का, और इसी तरह इसकी दलील हमें कहाँ से मिलती है, सूरह कहफ में वो जो बाघ वाला आदमी था ना, उसने भी यही कहा था ना, ये कहाँ आएगी कयामत, अगर आ भी गई तो वहां पे भी मुझे ऐसे ही मिलेगा और तुम वहां पे भी इसी तरह होगे। और एक और तरीके से भी आखरत को झुठलाया जाता है, और वो तरीका क्या है कि इंसान बेपरवाह होके अपनी जिंदगी में जो भी गलत कार्यां करता रहे, और जब उसको आखरत के बारे में कहा जाए तो कहता है अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, उसने को थोड़ी पकड़ना है, उसने तो बस सबको ही भेज देना है जन्नत में, ये जहन्नुम वगैरह ये तो सिर्फ ऐसी बातें हैं, सिर्फ डराने के लिए बताई गई हैं, वरना वो इतना गफूर रहीम है वो क्यों पकड़ेगा। और ये सेम चीज क्रिश्चन से भी मैंने सुनी है, वो भी कहते हैं कि वो मर्सीफुल है और वो तो हमें उस दिन तो कुछ भी नहीं होना, ये भी झुठलाना है। तो झुठलाने के लिए भी कई तरीक़ाकार हैं, जो इंसान जिस तरीके से इंसान आखरत के दिन के ऊपर ईमान नहीं रखता, तो वो लोग भी ऐसे थे, मुख्तलिफ थी उनकी बातें, और ये उनका इख्तलाफ ही बताता है कि उनको यकीन नहीं है, ये आपस के अंदर इख्तलाफ करना, अगर एक पेज पे होते तो फिर भी समझ आती कि हाँ भाई सबको यकीन है, इसका मतलब अंदर कहीं तो ये बात है कि कोई दिन होगा, तो इनके इख्तलाफ से ही पता चलता है कि यकीन अंदर नहीं है इस बात पे जो ये कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हर एक की अपनी अपनी भांत भांत की बोलियां। कल्ला सयालमून, हरगिज नहीं, अनकरीब वो जान लेंगे, क्या जान लेंगे जो ये बातें कह रहे हैं, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं है
जो जितने भी इनके इख्तलाफात हैं ना, जितनी भी इनकी थियोरीज हैं, ऐसा इनमें से कुछ भी सही नहीं है। जल्दी इनको पता चल जाएगा। सुम्मा कल्ला सा यालमून, फिर हरगिज नहीं, जल्दी इनको पता चल जाएगा, इनको मालूम हो जाएगा। ये दो दफा क्यों कहा गया? इसलिए पहली इसकी वजह ये है कि तकरार करने से बात ज्यादा रीइन्फोर्स करना मतलूब होता है। जैसे आप बच्चे को करें, समझ आ गई तुम्हें? आई है समझ के? नहीं समझ आई ना, तो आप कितनी दफा उसको कहते हैं ना एक बात बता के। तो यहां पे कहा गया पता चल जाएगा इनको, जल्दी पता चल जाना इनको किस चीज के बारे में, कि जो ये कह रहे हैं वो सब गलत है और हकीकत कुछ और है। तो एक तो ताकीद के लिए, दूसरा अगर हम इसको ऐसे ही लेते हैं कल्ला सयालमून, यानी हम पढ़ते चले जाते, तो कल्ला सयालमून का कल्ला का मतलब होगा यकीनन। जैसे कि हम इंग्लिश में भी कहते हैं ओ नो, मैं तो आ ही नहीं सकूंगी, या नहीं का माना ना भी लें तो ओ नो मैं लेट हो गई या लेट हो जाऊंगी। तो अब ओ नो का मतलब ये नहीं है कि मैं लेट नहीं हूंगी, बल्कि ये यकीन के लिए बात है कि जरूर ऐसा ही हो जाना है। तो कल्ला हरगिज नहीं सही आलमू, इस तरह से कहा गया कि यकीनन ऐसा होगा। दूसरे यहां पे एक लफ्ज होता है सौफा, उसका माना भी हम अनकरीब का ही करते हैं सून, लेकिन एक सीन आता है और फिर हम आगे बात बोलते हैं और इसका माना भी अनकरीब ही करते हैं। दोनों में फर्क है, सौफा में थोड़ी सी देर होती है और जैसे वो लफ्ज बड़ा है तो थोड़ी सी देर से आप जान लें, यानी होगा तो सही लेकिन जल्द होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम के बाद। जैसे मैं कहूं कि मैं आई, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैं चली गई, तो ऐसे नहीं कि वो आई और बस भागी और भागती हुई चली गई, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यानी स्टेप बाय स्टेप ये चीज होती है। लेकिन जब सीन कहते हैं ना, तो सीन से उसके अंदर बहुत ज्यादा जल्दी का माना आ जाता है कि जल्दी ही इनको पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा? अभी तो कयामत आई ही नहीं, यहां पे कहा जा रहा है जल्दी पता चल जाएगा। बात यह है कि जब इंसान की मौत आ जाए तो उसकी कयामत शुरू हो गई। कयामत अब 1,000 साल बाद आए या 10,000 साल बाद आए, उस बंदे का हिसाब किताब भी शुरू हो गया और उसकी जजा और सजा भी शुरू हो गई कब्र के अंदर उसके लिए, यानी कयामत के अहवाल उसके सामने आने शुरू हो गए, फरिश्ते भी उसको नजर आ गए, इस दुनिया की हकीकत भी पता चल गई, एक मिड टर्म जैसे रिजल्ट भी उसके सामने आ गया। तो मौत के वक्त ही इंसान को पता चल जाता है कि हकीकत क्या है, और मौत के लिए क्या इंतजार करने की जरूरत होती है? नहीं, इंसान को यह भी नहीं पता कि आज जिस दिन का आगाज मैंने किया है, इसकी रात जमीन के ऊपर मुझे आएगी या जमीन के नीचे आएगी, आज की रात मैं कब्र में हूंगी या बाहर हूंगी, किसी को भी नहीं मालूम। तो मौत के तो इंतजार की जरूरत ही नहीं, वो तो अचानक सोए सोए भी आ जाती है, जवानी में भी आ जाती है, सेहत की हालत में भी आ जाती है। तो जल्दी ही पता चल जाएगा। और बाज मुफसरी ने कहा कि पहला कल्ला सयालमून मौत का है और दूसरा कल्ला सयालमून जहन्नुम के किनारे पे जब खड़ा होगा, जहां ये वो बंदा जो के झूठलाता था, जो नहीं यकीन रखता था कयामत पे, तो जल्दी पता चल जाएगा, यानी कयामत आ जानी है, जब जहन्नुम के किनारे पे खड़ा हो जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या थी। तो ये दोनों कल्ला से यालमून, फिर मौत और जहन्नुम के किनारे खड़े होने का पता देते हैं, और दोनों जगह पे इंसान को अच्छी तरह समझ आ जानी। एक और वजह भी इस तकरार की है, तकरार उस वक्त भी की जाती है जब डांटा जाता है कि इनके लिए डांट है जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा, और हरगिज नहीं, फिर तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। और कल्ला इसलिए भी है कि बस करो, बस बंद करो अपनी ये बातें जो तुम कर रहे हो कयामत के बारे में, तुम्हें बहुत जल्दी पता चलने वाला है। अब आगे 11 आयात, इनमें एक रिदम भी है। देखिए, मिहादा, औतादा, अजवाजा, सुबाता, तो एक रिदम भी है इसके अंदर, खूबसूरत रिदम, मगर उनका कनेक्शन भी है पिछली इन आयात के साथ। अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया। नेमतों के जिक्र की यहाँ पे क्या जरूरत है? एक तो ये बात कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये याद दिलाया कि अल्लाह ताला के एहसानात तुम्हारे पर क्या क्या है। जब इंसान को ये एहसास होता है ना कि किसी का मेरे ऊपर एहसान है, तो उसका लाजमी नतीजा है, अगर उसकी फितरत अच्छी है, सही फितरत वाला है, फितरत करप्ट नहीं हुई, लाजमी नतीजा है कि वो उसके आगे झुकता है, वो उसके एहसान को समझता है, मानता है, और कुछ ना कुछ किसी ना किसी अपनी हैसियत के मुताबिक बदले की देने की भी कोशिश करता है, और उसके बारे में जानने की भी कोशिश करता है कि कौन है जिसने मेरे पर एहसान किया है। मसलन है कोई आप बहुत ही जरूरत में थे, बहुत ही जरूरत में थे, और आपने देखा कि एक दिन आपने दरवाजा खोला, आपके दरवाजे के बाहर किसी ने एक एनवेलप रखा है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। आप क्या दिल नहीं करेगा, मैं इतनी जरूरत में थी, कौन है वो जिसने मुझे ये दे दिया इस वक्त ही, जिस वक्त मुझे इतनी जरूरत थी, कौन है वो, उसका पता करूं। आप उसकी खोज लगाने की जरूर कोशिश करेंगे और एहसान मंद होंगे उसके, उसके बहुत शुक्र गुजार होंगे कि हम तो फाकों पे आ गए थे, और ये कौन है जिसने हमारे लिए इतनी बड़ी, यानी हमारे पर एहसान किया, इतनी बड़ी हमें फेवर दी। अगर देखा जाए तो इस कायनात में जरा गौर कीजिए, हम सब जरूरतमंद हैं, मोहताज हैं, सांस लेने से लेके खाने पीने, अपने सर्वाइवल के लिए टेम्परेचर, ग्रेविटी, जमीन आसमान, और पहनना ओढ़ना, और अमनो अमान, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके हम मोहताज हैं। आप गिनने लगे तो वो फहरिस्त खत्म नहीं होगी, इतनी सारी बेशुमार चीजें। और कोई है जो दिख नहीं रहा, लेकिन उसने बगैर मांगे हमारी जरूरत को जानते हुए हमारी जरूरतें सारी की सारी पूरी कर दी, जमीन को बिछा दिया, आसमान को खड़ा कर दिया, छत की तरह तान दिया हमारे ऊपर, सांस हमारी चल रही है, हमारे ऑर्गन्स चल रहे हैं, हमारे खाने और पीने और हमारे रहने और सहने का इंतजाम पूरा इस जमीन पे हुआ हुआ है, हमारे सर्वाइवल की हर चीज यहाँ मौजूद है, हमारी जरूरियात पूरी की जा रही है। तो क्या इंसान फिर सोचता नहीं है कौन है जिसने ये सब कुछ पूरा कर दिया, कौन है जिसने सब कुछ बना दिया और मेरी मांगे से पहले ही ये सब कर दिया? तो क्या एहसान मंदी के जज्बात नहीं आते, और क्या ये दिल नहीं चाहता कि मैं जानू वो कौन है? बस सिर्फ ये है कि आपको बिन मांगे मिल गया, इस वजह से शायद एहसास ही नहीं कि कितनी सारी नेमतें हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, बल्कि हमारे अपने जिस्म में मौजूद है। रब को जानना चाहें तो इन सबसे पहचान सकते। हमारी कभी आंखें अल्हम्दुलिल्लाह अंधी नहीं थी, तो आंखें मिलती तो हमें पता चलता आंख कितनी बड़ी नेमत है। हमारे कभी भी गुर्दे फेल नहीं हुए थे तो वरना पता चलता कि गुर्दे कितनी बड़ी नेमत है। हमारा दिल कभी धड़कना बंद नहीं हुआ वरना हमें पता चलता कि दिल का धड़कना कितनी बड़ी चीज। हमारे लिए कितनी सारी चीजें हैं जो कि बिन मांगे अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई है, और उन चीजों को अगर हम शुमार भी करना चाहें, शुमार नहीं कर सकते, जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं बिन मांगे। हमारी ये जमीन कभी अब फट के हमें अंदर नहीं ले गई वरना हमें ये पता चलता कि ये जमीन स्टेबल होना कितनी बड़ी नेमत। आसमान कभी हमारे पर गिरा नहीं है वरना हमें पता चलता कि आसमान का खड़ा रहना कितनी बड़ी नेमत। हमारी सांस कभी बंद नहीं हुई, और ना हमें पता चलता कि सांस का सहूलत के साथ चलते रहना कितनी बड़ी नेमत है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने ये नेमतें याद दिलाई हैं कि देखो, खास तौर पे उन नेमतों को याद दिलाया गया जिनमें इंसान का जरा भी बस नहीं है, जरा भी नहीं, और जरा भी उसका हाथ नहीं है। और ये वो नेमतें हैं जिनको के अल्लाह ताला ने बिन मांगे उसको अता किया हुआ, कभी उसके लिए दुआएं नहीं उसने की। और ये वो नेमतें हैं जिनको हर कोई इंजॉय कर रहा है, चाहे वो मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, काफिर है, मुस्लिम है, अमीर है या गरीब है, गमजदा है या खुश है, खुशहाल है या बदहाल है। वरना इंसान कहता कि अगर कोई और नेमत याद दिलाई जाती, कोई कह सकता था देखो ये तो अमीरों के पास होती है, हमारे पास कहाँ है, हम तो वैसे ही होमलेस है, तो कोई कह सकता था। लेकिन ये वाली वो नेमतें हैं, कयामत तक जितने इंसान आएंगे, आज हम जहाज को एक नेमत समझते हैं, हम एक सफर करके कहीं दूर चले जाते हैं, या फोन को नेमत समझते हैं, लेकिन ये आज के जमाने की चीजें पहले जमाने में नहीं थी। तो ऐसी चीजों को याद दिलाया गया जो कयामत तक के लिए इंसान उन चीजों का मोहताज है, बड़ा सख्त मोहताज है, और बिन मांगे मिल गई, और हर कोई उनसे फायदा उठा रहा है। कोई नहीं कह सकता कि मैं तो गरीब हूं, और मैं तो ऐसा हूं, और मैं तो इतना बेचारा हूं, इतना लाचार हूं, और मैं तो बूढ़ा हूं, इसलिए मेरे क्या काम की ये चीज। अब सब इनसे फायदा उठा रहे हैं। तो इन नेमतों की याद कराने का एक वजह ये है कि इंसान अपने मोहसिन को पहचाने, जिसने उसके ऊपर एहसानात किए, और उसका शुक्र गुजार हो, फिर उसके आगे आजी करे। जाहिर है जो उसको देता है इंसान उसके आगे झुकता जरूर है। और ये नेमतों का जिक्र करने की वजह ये है कि इंसान याद करे कौन है जो मुझे नेमतें देने वाला है, क्योंकि बाज दफा हम इन सारी नेमतों को इस्तेमाल कर रहे, लेकिन उन पे कभी भी नेमत देने वाले को हम कभी सोचते ही नहीं है। जैसे कुरान में है ना, कितने ही हैं जो जमीन के ऊपर चलते फिरते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला का कभी याद ही नहीं करते, कभी अल्लाह ताला की निशानियां ही नहीं देखते। ये मफहूम है आयत का। कितने ही हैं लोग जो दिन और रात अल्लाह की निशानियों के अंदर हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, सह रहे हैं, खुशियां गम सब कुछ यहाँ है, लेकिन कभी भी उन्होंने अल्लाह को याद ही नहीं किया। तो याद कराना भी एक मकसद है कि याद करे इंसान, और याद करने के बाद पहचाने उसको, और पहचानने के बाद शुक्रगुजारी का जज्बा उसमें आए। एक कुत्ते को भी कोई रोटी डालता है ना, तो उसको कहने की जरूरत नहीं, मैं तेरा मालिक हूं और मैं तुझे लेकर आया हूं, तू मेरे घर में रहता है, ये घर मेरा है, उसको कहने की जरूरत नहीं। वो देखता है कि मुझे रोटी डालने वाला कौन है, वो उसके आगे झुकता है, दुम हिलाता फिरता है, उसके आगे और पीछे होता है, उसके एक हुक्म के ऊपर वो दौड़ता है। अल्लाह ताला ने सूरह आदियात इसी में आएगी, इसी बारे में और यही मिसालें दी। घोड़े से ही वफादारी सीख लो, तुम तो अपने रब के इतने भी वफादार नहीं जितना एक जानवर वफादार होता है अपने मालिक का। और फिर तीसरी बात क्या है कि ये नेमतें याद दिलाने की जरूरत क्यों है, कि इंसान को पता चले कि जब किसी ने ये सब कुछ दिया है, जाहिर है कोई पूछेगा भी तो सही कि भाई क्या किया इनके साथ, इतना कुछ मैंने तुम्हें दिया क्या किया। तो ये एक इंसान के लिए रिमाइंडर है कि जवाबदेही भी होनी है, ये नहीं कि नेमते लेके बैठे रहो और कोई जवाबदेही ना हो, और तुमने शुक्र अदा किया कि नहीं, तुमने पहचाना कि नहीं मालिक को, तुमने फिर उसके आगे अपने आप को झुकाया कि नहीं। तो ये सारे मकसद है जिसकी वजह से ये याद दिहानी कराई गई। अब जो नेमते हैं वो कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है कि कोई एटम का आपको बताया जा रहा है, या कोई ऐसी चीज आपको किसी ऐसे वायरस का बताया जा रहा है जो आपको समझ ही ना आए, या कोई साइंस के कोई फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं। इतनी आसान चीजें कि आप आयतें भी पढ़ के सोचते हैं इसमें तो कोई ज्यादा मुश्किल बात ही नहीं है समझनी, लेकिन जब इंसान गौर करता रहता है ना, जब इंसान इन आयात में डूबता है और गौर व फिक्र की ही दावत है, तो फिर वो हैरान भी होता है, और फिर वो मेसमराइज भी होता है, और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ए रब तू कितना अजीम है, जिसने मुझे ये सब कुछ नवाज दिया, जिसने मुझे इन सारी नेमतों में रखा, और मैंने तो पहचाना भी नहीं तुझे, और मैंने कभी इन पे तवज्जो ही नहीं दी। तो कितना अजीम है यार अब, वो है ना, नफी खल्क समावाती वल अर्दी वख्तिलाफ लैली वन नहारी ल आयात लि उलिल अलबाब। देखो जो जमीन आस ये जो जमीन आसमान है, और जो दिन और रात का आना जाना है, इसमें निशानियां हैं, लेकिन अकल वालों के लिए। अकल वाले इनको देखते हैं और फिर अल्लाह को याद करते हैं, फिर उठते बैठते लेटते वो अल्लाह को याद करते हैं। यही कहा गया ना सूरह आले इमरान के एंड में, क्योंकि उठते बैठते लेटते हर जगह ही तो निशानियां अल्लाह ताला की नजर आ रही हैं। तो वो इंसान ओवरवेलम्ड होता है। तो अल्लाह ताला ने किन निशानियों का जिक्र यहां पे फरमाया, अलम नचालिल अर्दा मिहादा, क्या हमने नहीं बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श। अच्छा देखिए, अब ये नहीं है, ये सवाल का अंदाज इसलिए नहीं कि आपसे पूछा जा रहा है बनाया कि नहीं बनाया, तुम यस या नो में आंसर करो, ये कोई क्विज नहीं लिया जा रहा आपसे। जैसे एक माँ कहती है ना बच्चे को, बेटा मैंने क्या तेरे लिए सब कुछ नहीं किया, तेरे लिए रातों को नहीं जागी। बाप कहता है ना, क्या मैंने आज तक तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। तो वो पूछ नहीं रहे होते, वो याद करा रहे होते कि सोचो तो सही, आज तुम क्या कर रहे हो, आज तुम उसी रब के आगे खड़े हो रहे हो अकड़ के, और कहते हो कैसे कयामत लाएगा, यहां बाज तो उसको मानते ही नहीं, यहां बाज उसके हुक्मों की नाफरमानियां करते हैं, जज्बाए तशक्कुर ही नहीं उनके अंदर, गुम है कहीं और। तो सोचो तो सही, जहां तुम गुम हो गए हो, कभी सोचा तुमने इस जमीन के ऊपर रहते हुए, उसको तो पहचानो जिसने ये जमीन बिछा दी तुम्हारे लिए। तुम इसके ऊपर अपने काम काज कर रहे हो, कभी अपने कोई कहीं तुम्हें फतह मिल रही है, कहीं तुम्हें कहीं पास हो रहे हो, कोई कामयाबी मिल रही है, कोई बड़ा नफा मिल रहा है, तुम उस पर बड़ी खुशी कर रहे हो, और ये नहीं सोचते कि देखो अगर वो रब तुम्हारे लिए इस जमीन को मिहाद ना बनाता, पंगूड़ा भी मुराद है, माँ की गोद भी मुराद है, बिछोना भी मुराद है, देखो अगर वो ऐसा ना बिछा देता तो तुम क्या करते, ये जमीन अगर इस तरह से ना बिछी होती, तुम्हें अंदर ले जाती, फटती जाती, हिलती जाती, तुम क्या करते, तुम रह ही नहीं सकते थे यहाँ। लेकिन अल्लाह ताला ने कितने इसको, जब आपको बताया गया ना कि फर्श है, बिस्तर है, या पंगूड़ा है, या माँ की गोद है, तो माँ की गोद में कितना सुकून होता है ना, पंगूड़े में बच्चे के लिए कितना आराम है ना, यानी तुम आराम से अपने सब काम यहाँ पे करते हो। और इसी आयत को एक को इलेबोरेट आप करने लगे ना, पूरा टाइम इसमें गुजर जाएगा, ये किस तरह हम यहाँ पे कितनी आसानी के साथ, सहूलत के साथ हम यहाँ पे चलते फिरते रहते सहते हैं, सिर्फ एक जमीन ही हमारे लिए अगर आराम की जगह ना रहे, इसमें ग्रेविटी ना रहे, या इसके अंदर ऐसे जलजले आते रहें, या ये फटती रहे, या ये अपने ऊपर चलने ना दे किसी को, या ये इतनी नरम हो जाए, या इतनी सख्त हो जाए ये कि इंसान यहाँ पे कोई खुदाई ना कर सके, कुछ उगा ना सके, या नरम इतनी हो जाए कि धंसते जाए पैर इसके अंदर, या इसकी ग्रेविटी ऐसी हो जाए कि इतनी कम हो जाए इंसान उड़ता फिरे, मतलब तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, या अपनी रफ्तार से तेज होने लगे, कितनी तेज ये चल रही है उस पे भी हमें कोई फील नहीं हो रहा, आराम से हम यहाँ पे जैसे माँ की गोद में बच्चा आराम से होता है, सुकून आ पाता है, हम कितने आराम से चलते फिरते हैं, कितने आराम से रहते सहते हैं। कभी आज तक मांगा आपने अल्लाह ताला से कि या अल्लाह जमीन को मेरे आराम की जगह बना दे, कभी नहीं, उसने खुद ही बिछा दिया तुम्हारे लिए, तुम सोचते नहीं हो। हाँ तब हम सोचते अगर अल्लाह ना करे ये हर वक्त जलजले आने लगते, कभी हिलते हिलने से बंद ही ना होती, हिलती रहती हर वक्त, तब हम जरूर मांगते अल्लाह इसको ठहरा दे, आए अल्लाह हम क्या करें, हमारी तो जिंदगी दरहम बरहम हो जाती, हम तो कुछ करने के काबिल ना रहते, बस खौफ के आलम में एक दो तरफ दुबके रहते और सोचते रहते कि बस अभी गए और अभी गए। तो जमीन को मेहाद बनाना क्या तुम सोचते नहीं कितनी बड़ी नेमत है, वल जिबाला उतादा और पहाड़ों को मेखे बना दिया, मेखे इस तरह कि जिससे ये जमीन ठहरी हुई है, ये जमीन हिलती थी, अल्लाह ताला ने इसमें पहाड़ गाड़ दिए, अब आप साइंस कहती है जितने पहाड़ ऊपर होते हैं उतने नीचे भी होते हैं, तो पेग्स की तरह जैसे खैमे को गाड़ दिया जाता है ना, तो अगर खैमे की वो जो मेखे हैं निकाल दी जाए तो उड़ता फिरेगा, इसी तरह जमीन के ऊपर से पहाड़ हटा दिए जाए तो ये उड़ती फिरती हिलती जाती, इतना हिलती कि हम रह ही नहीं सकते थे यहाँ पे। तो कितनी तुम्हारे लिए कभी सोचा कि पहाड़ों को देखो मेखों की तरह गाड़ दिया, तुमने गाड़ा क्या या तुमने मांगा क्या, या तुम्हारा इसमें कोई हाथ है जमीन को ठहराने में आरामदेह बनाने में या पहाड़ों को गाड़ने में तुम्हारा कोई हाथ है? कुछ भी नहीं। तो पहचानते नहीं कि कोई है रब, और जब पहचान लिया कि हाँ कोई है तो तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी के जज्बात नहीं होते? वह खलकनाकुम अज़वाजा, और तुम्हें जोड़ा जोड़ा बनाया, मर्द का औरत के साथ जोड़ा बना दिया, और देखिए इस जोड़े में सुकून है, जोड़े में कंप्लीशन है, और तभी इंसान एक दूसरे के साथ रहता है तो देखिए आगे उसकी नस्ल बढ़ती है। तो अगर जोड़ा ना हो तो इंसान की कंप्लीशन नहीं होती। तो इससे सोचते नहीं, इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया हर चीज हमने जोड़े जोड़े में पैदा की है, तो कभी सोचते नहीं हो कि दुनिया का भी तो जोड़ा होगा। अगर दिन और रात जोड़ा है, सूरज और चांद जोड़ा है, नर और मादा जोड़ा है, तो दुनिया का जोड़ा क्या है? आखरत। जरूर इंसान के जहन में आएगा कि आखरत जोड़ा है। अल्लाह अकबर। वह जालना नौमा कुम सुबह आता, और तुम्हें नींद आराम का जरिया तुम्हारे लिए बना दी। सुबह आता है ना, हर चीज से कट जाता है इंसान, यानी काम काज अफरा तफरी, काम कारोबार, इधर पढ़ाई लिखाई और जितने भी धंधे हैं इस दुनिया के, उनसे कट के नींद में चला जाता है, और नींद उसको आराम दे देती है। जब नींद से उठता है तो फ्रेश होता है। इसीलिए देखें किसी के ऊपर अल्लाह ताला रहम फरमाए, कोई गम इतना पहाड़ टूट जाए तो उसको सुला देते हैं, क्योंकि इसको सुकून आ जाए। तो नींद ऑलवेज आराम का जरिया, सुकून का जरिया। लेकिन नींद ऐसी चीज है सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला की वो मखलूक है, अल्लाह अकबर, के जो इंसान के बस में नहीं। कभी वो सोना चाहता है तो सो नहीं पाता, करवटें बदल बदल के कई रातें, आपको पता होंगी कि जब इंसान परेशानी में होता है कुछ होता है नींद ही नहीं आती। और कभी ऐसा होता है इंसान जागना चाहता है और नींद ऐसे तारी होती बैठा बैठा सो जाता है। आप देखें रमजान के आखिरी अशरे में इंसान जागना चाहता है, कितनी मुश्किल होती है। तो नींद के आगे भी तुम बेबस हो, तुमसे तो अपनी नींद भी कंट्रोल में नहीं, ना ला सकते हो अपनी मर्जी से ना ले जा सकते हो। कई लोग गोलियां भी खाते हैं उनको नींद नहीं आती। तो देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे सुकून के लिए, आराम के लिए एक नींद, एक चीज अपनी, एक मखलूक बनाई है जो तुम्हें आके आराम दे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सारा दिन इंसान उसी रब की नाशुक्रियों में गुजार दे, सारा दिन इंसान उसी के खिलाफ बोल रहा है, उसी के मुकाबले कर रहा है, बगावत कर रहा है उसके अहकाम के आगे, और तोड़ता है उसकी हदों को। और जब फिर वो लेटता है ना, तो अल्लाह ताला ये नहीं फरमाता कि नींद अब इसको आराम ना दे, नींद अब इसके ऊपर आए ही ना, अल्लाह ताला फिर नींद भेज देता है। हर रात इंसान के लिए आराम के लिए वो एक नींद को भेज के उसके लिए एक जरिया सुकून का बना देता है। हर रात इंसान सोता है, अल्लाह ताला की इस मखलूक से फायदा उठाता है, और दिन में भी सारा दिन फायदा उठाता है, इसी जमीन पे चलता है, अपने जोड़ों के साथ इंजॉय करता है, आराम करता है, भागता दौड़ता है, गाड़ियां दौड़ाता है, क्या करता है इस जमीन के ऊपर, लेकिन कभी नहीं सोचता। देखो जिस रब की मैं ना शुक्रिया करता हूं, ना फरमानियां करता हूं, वो कैसा अजीम रब है, मैं कितनी मोहब्बत करने वाला रब है, इसने फिर मेरे सोने का इंतजाम कर दिया। इंसान सोए ना ना तो वो बेचैन रहता है, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। एक रात भी आपकी स्लीपलेस गुजरे तो अगले दिन क्या हाल होता है, सारे दिन की मसरूफियात पे असर पड़ता है। नींद कितनी जरूरी चीज है। कोई मुजरिमों से उन्होंने कोई राज उगलवाने हो तो उनको नींद से डिप्राइव कर देते, सोने नहीं देते। और कभी इंसान की हालत ये भी हो जाती है, आपने देखा होगा कि कहता है इंसान के मुझे खाने को ना दो, बस मुझे सोने दो, आराम चाहता है। इतनी बड़ी जरूरत है नींद उसके लिए। तो कभी इस जरूरत को महसूस किया कि नींद भी तो अल्लाह ताला की एक मखलूक है और अल्लाह ताला की एक नेमत है, तो इसके ऊपर मैंने कभी शुक्र अदा किया? वजाल लिबासा, और अल्लाह ताला ने रात को लिबास बना दिया, जैसे लिबास ढांप लेता है जिस्म को, इस दिन को उसने ढांप दिया रात ने आके, ताकि तुम्हें आराम मिले। रात की चादर तन जाती है आसमान के ऊपर ताकि इंसान को सुकून आ जाए, क्योंकि जो अंधेरे में उसको नींद आती है वो दिन में नहीं आती। इसीलिए आपने देखा किसी को दिन में सोने की जरूरत पड़ जाए तो भी पर्दे इस तरह से मोटे मोटे पर्दे खींचते हैं कि कहीं लाइट ना आए। तो अल्लाह ताला रात उसने बना दी ताकि तुम सुकून पा सको, आराम से सो जाओ। इतनी इतनी चीजों का तुम्हारा ख्याल किया, कितनी बारीक बातें जो हम समझे तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन कभी इनकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते। वजअलना नहारा माशा, और दिन को काम का वक्त बना दिया, काम का जरिया बना दिया कि तुम्हारी जिंदगी की भाग दौड़ तुम आराम से कर सको। अब जितनी भी रोशनी कर ले, दिन की तरह की रोशनी इंसान नहीं कर सकता। आप इसमें अपने काम काज सहूलत से कर लेते, कमाइयां कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, दिन है माश का जरिया। और यहां से ये भी पता चलता है रात को अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाया, दिन को काम काज के लिए बनाया। आप इस सर्कल को, इस साइकिल को उलट ना करें कि दिन को हम सो रहे हैं और रात को हम बैठ के टीवी और उसके सामने अपना वक्त गुजार रहे हैं। वह बनाई ना, और बनाए हमने, फौकाकुम, तुम्हारे ऊपर सब अनशिदादा, सात मजबूत। ये सात मजबूत क्या है? आसमान। तुम्हारे ऊपर सात मजबूत आसमान खड़े कर दिया। आज साइंस कहती है कि ये नहीं भाई धुआं ही है, लेकिन ये क्या मजबूत है शायद कभी इंसान को पता चले, अभी तो उसने इतना एक्सप्लोर ही नहीं किया, उसका इल्म महदूद है। लेकिन सात आसमान है और ऐसे मजबूत है, कहीं आप इसको सूरह मुल्क में हमने पढ़ा है ना, कहीं आप इसके अंदर कोई रखना देखें, कोई कमजोरी, कोई शगाफ देखें, कहीं से फट रहा हो, कुछ भी नहीं, मजबूत है, कब से खड़ा हुआ है। वजा ना सिराजं वहाजा, और सूरज को हमने रोशन होने वाला बना दिया। अब साइंस को पता चला कि सूरज से रोशनी एमिट होती है, ये कहीं से रोशनी लेता नहीं, इससे रोशनी निकलती है। तो वहाज वही है जो रोशनी देने वाला हो, खुद रोशन है। और देखिए कैसी अल्लाह ताला ने सूरज की जरूरत इंसान के लिए रख दी, कि जब सूरज नहीं इस जमीन तक पहुंचा था तो आई से जा गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था इस जमीन पे, एक जमाना ऐसा भी आया था। सूरज कितनी बड़ी जरूरत है, तुम रोशन करते हो सूरज को, तुमने बनाया है, तुमने ये दिन और रात का निजाम चलाया या आसमान को खड़ा किया हुआ, इनमें से क्या है जो तुम खुद करते हो? कुछ भी नहीं। वह अनजलना मिनल मुआसिरात इमा अंतजाजा, और हमने नाजिल किया बादलों से पानी बकसरत, मुआसिरात आसर कहते हैं निचोड़ देने को, और मुआसिरात निचोड़ देने वालियां यानी बदलियां, बदलियां तुम्हारे लिए बनाई जो कि बारिश को निचोड़ देती हैं जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है, और सज्जाज यानी बह निकले जो पानी। तो बारिश इतनी होती है तो फिर ही कुछ उगता है, अगर बारिश ना हो तो कहत पड़ जाता है। तुम बारिशें करते हो क्या? उस पे तुम्हारा कितना जोर है? बारिश ना हो तो जानवर भी मरने लगते हैं और इंसानों के लिए भी मुश्किलात हैं। जिंदगी का बहुत बड़ा इन्हिसार बारिशों पे है। आप देख लें जिन इलाकों में बारिश नहीं होती वहां पे क्या हाल हो जाता है, अफ्रीका में देखें वहां पे बारिशें नहीं होती तो क्या होता है, कैसा कहत है। और किस लिए बारिशें की? लिनुखरिज भी हब्बा व नबाता, ताकि तुम्हारे लिए गल्ला उगाए। गल्ला गल्ला कौन खा रहा है? अनाज कौन खाता है? इसका भूस ही होता है जो कि जानवर खाते हैं, वरना अनाज तो इंसान ही खाता है ना। गल्ला से मुराद है कि चावल, गंदम, और जो हब है वो अनाज है, इंसान की जरूरत है ये। चना, दालें, ये सब अनाज है। अल्लाह ताला देखो कितना बड़ा निज़ाम चला रहा है कि बारिश का आप वाटर साइकिल अगर आप देखें तो कैसे चला, कहाँ से भाप उड़ी, समुद्रों से पानी उठा के लेके गया, बादलों में आई, बादल चले, किसी जगह जाके बरसे, ना इंसान का बरसाने पे कोई हाथ है और ना कितना बरसे इसमें कोई हाथ है। अगर आपके ऊपर से बादल चले जाएं आप उनको रोक नहीं सकते कि नहीं यहीं पे बारिश करो, हमें बारिश की ज़रूरत है, और अगर बारिश बरसाने लगे आप रोक नहीं सकते कि बस करो अब और ना बारिश करो। सुभान अल्लाह, तो ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है ना, वो अपनी कुदरतें दिखा रहा है, तुम देखते नहीं इसके पीछे जो गैब में है वो हस्ती कौन है जो ये निज़ाम चला रहा है, और तुम्हारे लिए उगाए हैं उसने गल्ले भी और नबाताते, तुम्हारे लिए कहाँ से आया। इसलिए सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जो कुछ भी जमीन पे है सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे लिए किया गया, और नबातात भी उगाई, ये प्लांट्स उगाए तुम्हारे लिए, दरख्त उगाए तुम्हारे लिए, वो जन्नात इन अल्फाफा, और बागात इन लिपटे हुए घने बागात जिनमें कहीं कहीं खजूर है, कहीं अंगूर है, कहीं और फल है, और नबातात में सब्जियां सारी आ गई वो हैं, बागात में सारे फल आ गए, तुम्हारे लिए कितना एहतमाम किया। आप कभी जब खाना बनाएं तो जरूर ये किया करें प्रैक्टिकल इन्हीं आयात का, जब आप कोई भी सब्जी गोश्त कुछ बनाते हैं ना तो आप जब एक एक बोतल उठाते हैं जिससे आप कहीं नमक डालते हैं, कहीं मिर्चें डालते हैं, कहीं धनिया डालते हैं, कहीं जीरा डालते हैं, कहीं गरम मसाला डालते हैं, आप जितनी चीजें डाल रहे होते हैं ना, सोचें एक हांडी को बनाने के लिए कितना एहतमाम मैं कर रही हूँ, ये सब चीजें अल्लाह ताला ने अता की, एक खाना बनाने के लिए मैं कितनी सारी अल्लाह ताला की नेमतों को यूटिलाइज कर रही हूँ, ये भी उसने उगाया, कहीं जीरा भी उगा होगा, धनिया भी होगा, कहीं मिर्चें भी होंगी, कहीं नमक की कान होगी, कहीं को हर चीज देखें थोड़ी थोड़ी आपने डाली, फिर कहीं तेल डाला, कहीं गोश्त डाला, कहीं सब्जी डाली, कितना कुछ डाला, फिर एक खाना बना, और इस एक खाने को बनाने के पीछे, इसको उगाने के लिए कितना अल्लाह ताला का निज़ाम चला, कितनी बारिश, कहीं से बारिश का निज़ाम पहले चला, बारिश आई वहां पे बरसी, फिर किसान ने उसको काटा, फिर वो मार्केट तक आई, फिर कितना कुछ यूज हुआ है, सिर्फ ये एक लुकमा जब आप रोटी का तोड़ के उसके साथ सालन लगा के खा मुंह तक लेकर आए, सोचे इस एक लुकमे में कितना अल्लाह ताला का निजाम शामिल हुआ, तो ये एक लुकमा मेरे तक आया, क्या मैं उस रब की शुक्रगुजार हूं या नहीं, ये सवाल है। हम खाते रहते हैं खाते रहते हैं, ना शुरू में अल्लाह का नाम, ना आखिर में अल्लाह का नाम, ना शुक्र शुरू में रियलाइजेशन कि जिसने मुझे दिया है मैं उसका नाम ले लूं, ना आखिर में पेट भर जाने के बाद ये कोई एहसास कि वो जिसने मेरा पेट भर दिया वो हस्ती इस लायक है कि मैं उसकी शुक्रगुजार हो जाऊं। तो ये 11 आयात हमें याद दिलाती हैं, इनको आप पढ़ते रहें और देखते रहें और सोचते रहें तो आप फिर भी इनकी असल हकीकत तक, इन नेमतों के पीछे कितना कुछ है आप ये समझ ना पाएंगे। इन्ना यौमल फसली कैना मीकाता, इस सब के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसे ही समझ समझ लें कि ये सब चीजें गवाह हैं इस बात की, ये सब चीजें इस बात की शाहिद हैं कि देखो एक दिन आएगा जो फैसले का दिन होगा, और वो दिन मुकर्रर है अल्लाह ताला की तरफ से, वो दिन अटल है, वो जरूर आने वाला है। ये ऐसे ही जैसे सूरह तूर में अल्लाह ताला ने कस्में खाई ना, वत्तूर वकिताबी मस्तूर और फी रक्किम मंशूर, ये सारी कस्में खा के अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि वो दिन कयामत का जरूर वाकई होने वाला। इसी तरह यहाँ पे ये कस्में तो नहीं है लेकिन यहाँ पे इन चीजों को निशानियों के तौर पे याद दिला के अल्लाह ताला ने फरमाया, जो रब तुम्हारे लिए ये सब कर सकता है ना, जिसमें तुम्हारा जरा सा भी हाथ नहीं, तुम अपने आप को बड़ी चीज समझते हो, इनमें से तुम किसी चीज को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ना उगाने को कहीं से ये निकली है, अम्बता का लफ्ज नहीं आया यहाँ पे, नुखरिजा इखराज का लफ्ज आया, ये हमें याद दिला रहा है तुम भी निकलोगे जमीन से इसी तरह जैसे ये गल्ला और नबातात निकलती है ना, फसलें निकलती, इस तरह तुम भी जमीन से निकलोगे, और वाकई इंसान निकलेगा जमीन से, जब मर के दोबारा जिंदा किया जाएगा तो जमीन से ही उगेगा, प्लांट्स की तरह ही उगेगा, ये हदीस में आता है। तो हमें पता चलता है कि इनमें से किसी पे भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं। जिस मालिक ने इतनी कुदरत के साथ अपनी इन सब चीजों को किया, वो कयामत का दिन भी ला सकता है। जो यौमुल फसल है, एक तो माना फैसले का दिन, फैसले हो जाएंगे सबके दरमियान, फैसले, हर झगड़े का फैसला हो जाएगा। ये दुनिया के अंदर लोग लड़ते फिरते हैं, हर कोई कहता है मैं सही हूं, दूसरा कहता है मैं सही हूं, और कोई मानने को तैयार नहीं। सबका फैसला हो जाएगा, हक और बातिल में फैसला हो जाएगा, क्या हक था और क्या बातिल था। इसी तरह फसल फासले से भी है, फासला जुदाई, ये जुदाई का दिन है। किस में जुदाई हो जाएगी? नेकों और बदों में जुदाई हो जाएगी, काफिर और मोमिन में जुदाई हो जाएगी, माँ और बेटी में जुदाई हो जाएगी, बाप और बेटे में जुदाई हो जाएगी, हत्ता के दूध पिलाती माँ और वो दूध पीता बच्चा, इनमें जुदाई हो जाएगी। तो ये सब जुदा जुदा हो जाएंगे, तो वो जुदाई का दिन भी है। जिंदगी वहां पर आकर एक नई जिंदगी का आगाज होगा, जो आखिरत की जिंदगी है, जिसमें इंसान के वो रिश्ते जो दुनिया में थे और बहुत प्यारे थे, उनसे जुदाई हो जाएगी, और कोई किसी को पूछेगा नहीं। तो ये मुकर्रर है, इसलिए कि वो कहते थे ना, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता कयामत का दिन, ले आओ ना, इतनी धमकियां दे रहे हो, ले आओ, हम तो मानते नहीं है, ले आओ ना, अब अजाब ले आओ। तो फरमाया वो दिन मुकर्रर है, फिक्स्ड है, किसी के कहने से जल्दी नहीं आना और डिले करने से दूर नहीं हो जाना। तो वो दिन अल्लाह ताला ने ऑलरेडी मुकर्रर कर दिया हुआ है, जिसका इल्म सिर्फ उसके पास है। तो सेपरेशन का दिन आने वाला है, तब सेपरेशन हो जाएगी। अल्लाह अकबर, नेक और बद अलग अलग हो जाएंगे, आमाल के फैसले हो जाएंगे, और फैसले सिर्फ इंसानों के ही नहीं, जिन्नों में भी फैसले हो जाएंगे, जानवरों में भी फैसले हो जाएंगे। वो दिन कैसा होगा? यौम युनफखु फिस्सूरी फतअतूना अफवाजा, जिस दिन फूंक मार दी जाएगी सूर में, तो तुम आओगे फौज दर फौज। सूर क्या है? एक हॉर्न की शक्ल है, नरसंगा। जब उसके अंदर फूंक मार दी जाएगी, तो सब फौज दर फौज, ग्रो दर ग्रो पहुंच जाएंगे। अब आप देखें कि वो जो सूर है, वो इसराफील अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह के अंदर पकड़ा हुआ है इस वक्त भी। वाइल वी आर हेयर टॉकिंग, इस वक्त भी उनके मुंह में वो सूर है, और वो मुंतजर है कि किस वक्त अल्लाह ताला का हुक्म हो और वो सूर फूंक दे। तो आसमान की तरफ उनकी निगाहें हैं और उनके कान लगे हुए हैं अल्लाह ताला के हुक्म के लिए। जब वो सूर फूंकेंगे तो कयामत बरपा हो जाएगी, और फिर लोग सब के सब मौत की वादी में चले जाएंगे। जब दोबारा सूर फूंकेंगे तो लोग खड़े होंगे, और उनका हाल क्या होगा कि वो चल पड़ेंगे दम साधे एक ही तरफ, किसी को ऊंची सांस लेने की भी मिजाल नहीं होगी, और हर बंदा समझ लेगा कि आज फैसले का दिन है, आज नतीजे का दिन है। किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि देखो एक दिन फैसले का आना है, देखो एक दिन ये होना है, नहीं, हर कोई समझ जाएगा। वो जो इनकार करते थे, उनको भी अच्छी तरह पता होगा कि ये कौन सा दिन है। तो ये सूर फूंकने से कयामत का आगाज होगा, और ये जुमे का दिन होगा, लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे, जैसे वो नॉर्मल रूटीन के काम करते, और कयामत आ जाएगी। वफुतिहत सम उफकैनत अबवाबा, तो आसमान खोल दिया जाएंगे, आसमान को खोल दिया जाएगा, फकानत अबवाबा, और वो दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। यानी वो ही आसमान जो आज आपको लगता है कि ये मजबूत है, और आज तक लाखों साल गुजर गए, इस आसमान को कुछ नहीं हुआ, वही आसमान अब दरवाजे दरवाजे हो जाएगा, यानी फट जाएगा बिल्कुल। दरवाजे दरवाजे होने से मतलब क्या है कि खुल जाएगा और फरिश्ते उतरने शुरू हो जाएंगे इस आसमान से। क्यों फरिश्ते उतर रहे हैं? क्योंकि ये हशर का मैदान बन जाना है ना, इसके अंदर अब सारे फैसले होंगे। तो अब फरिश्ते जौक दर जौक उतरते आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। वसुयरतिल जिबाल, और चला दिए जाएंगे जिबाल यानी पहाड़, पहाड़ चला दिए जाएंगे। फकानत सराबा, और पहाड़ भी ऐसे सराब हो जाएंगे। सराब वो जो मेराज जो आप देखते हैं, जब बहुत धूप हो तो आपको दूर नजर आता है जैसे पानी है, वो पानी नहीं होता, वो तो सराब है। तो पहाड़ कैसे सराब बन जाएंगे? पहले तो ऐसे हो जाएंगे कि बिल्कुल उड़ जाएं, जैसे इतना जलजला आएगा कि पहाड़ चूरा चूरा हो जाएंगे और उड़ जाएंगे, जैसे अब बादल होते हैं, इस तरह चलेंगे। और उसके बाद आपको पता है ना कि रेत या जो धूल मट्टी होती है वो पर एक वक्त में बैठ जाती है, तो यानी पहाड़ बिल्कुल गायब होंगे, आप देखेंगे तो कोई पहाड़ ही नहीं होगा। ये है फैसले का दिन, इस पे दुनिया, इस दुनिया का इख्तिताम हो रहा है ना। पहाड़ रहे, समुद्रों में आग भड़की हुई है, आसमान फटे चला जा रहा है, सारी दुनिया फना हो जाएगी। और सब इंसान अगले पिछले अपने रब के सामने फौज दर फौज हाजिर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग कयामत के दिन तीन फौजों में तकसीम होंगे। एक फौज उन लोगों की होगी जो पेट भरे हुए लिबास पहने हुए सवारियों पर सवार मैदाने माशर में आएंगे, दूसरी फौज वो होगी जो पैदल आएगी, जो चल के मैदान में आएंगे, तीसरी फौज उन लोगों की होगी जिनको चेहरों के बल घसीट के मैदान माशर में लाया जाएगा। तो सब वो जो फौज दर फौज आ भी रहे होंगे ना, वो एक जैसे नहीं है, सबके डिफरेंट हालात होंगे जिनमें वो आ रहे होंगे, अपने अपने अमल के मुताबिक। अब इसके बाद वही जो कल्ला से आलमून बताया गया ना, कि जहन्नम के किनारे पे खड़े होके याद आएगा, पता चलेगा तुम्हें कि क्या हकीकत है, तो उसका जिक्र यहां पे आ रहा है। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम बेशक घात में लगी, यानी किसी जगह पे, जैसे आप देखे ना शेर, शेर को अगर आपने कभी देखा हो वो कैसे शिकार करता है, तो वो पहले छुप के बैठा होता है, और जूं ही शिकार उसकी रेंज में आता है उस वक्त वो इतनी बड़ी जंप लगाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, एक ही जुस्त लगाता है। जहन्नुम भी घात में बैठी हुई है, अपने शिकार के इंतजार में है, जो ही शिकार इसके सामने आएगा ये इसको दबोच लेगी। अल्लाह अकबर। तो जहन्नुम वालों को आग इस तरह से अपने कब्जे में ले लेगी। हसन बसरी फरमाते हैं कि जहन्नम के ऊपर पुल है जिस पर निगरान फरिश्तों की चौकी होगी, जिसके पास जन्नत में जाने का परवाना नहीं होगा उसको गुजरने नहीं दिया जाएगा, उसको वहीं पे जहन्नम अपने अंदर ले लेगी, जैसे हमने सूरह हदीद में पुल सिरात का पढ़ा था। और ये जहन्नुम तब तक नहीं आराम करेगी जब तक अल्लाह ताला अपना कदम मुबारक इसमें न डाल दे, कहती रहेगी हल में मजीद हल में मजीद, यानी इसमें कोई कमी नहीं है कि वो भर जाएगी तो फिर किसी की जगह ही नहीं रहेगी, नहीं वो बोलती जाएगी। अल्लाह ताला ने सूरह काफ में फरमाया ना, अल्लाह ताला से पूछेगा हल इन तलाती, क्या तू भर गई है, कहेगी हल में मजीद बोलती जाएगी।
तो ये एक बला है जहन्नम, जो गुर्राएगी भी, इसकी आवाज भी होगी, इसका चीखना चिल्लाना भी होगा, इसका गुस्सा भी होगा, जैसे हमने सूरह मुल्क में पढ़ा है। लितौगीना मआबा, ये किसके लिए है ठिकाना, किसका ठिकाना है? तौगीन का। तागी कौन होता है? जैसे हम कहते हैं ना, तुगयानी आ गई, दरिया में तुगयानी आ गई, तो तुगयानी क्या है? यानी दरिया अपनी हदों से निकल गया। तो तागी वो है जो हदें क्रॉस कर दे, जो अल्लाह ताला ने बाउंड्री सेट की हुई है उनको तोड़ने वाला, उन हदों से निकलने वाले को तागी कहते हैं। अब कौन है जो हदें तोड़ने वाला होता है? यानी अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं वो उनको ओबे नहीं करता, अपनी मर्जी करता है, वो अपनी मर्जी चलाने चाहता है, वो उन हदों से बाहर निकलता है। और इसके अंदर वो सब लोग भी आ गए जो शिर्क करने वाले हैं, मगर उसके अलावा वो भी हैं जो कबीरा गुनाह करें या सगीरा गुनाह करें। देखें, कोई भी गुनाह अल्लाह ताला की हद को तोड़ना है ना, कोई ज्यादा तोड़ता है, कोई कम तोड़ता है, कोई छोटा तागी है, कोई बड़ा तागी है। लेकिन जिस वक्त इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है और उसने बता दिया ये लिमिट्स हैं तुम्हारी, इनके अंदर रहो, ये हराम है, तुम इसको उबे करो, तो इंसान जब उस हराम में मुंह मारता है तो हद तोड़ रहा है, हद से बाहर निकलता है, उसकी बाउंड्री थी वो अपनी बाउंड्री से निकल गया। तो जहन्नुम ठिकाना है तागियों का, कोई बड़ा तागी और कोई छोटा तागी। और माआब क्या होता है? वो जो जहां पे चला जाए तो फिर उसके बाद वहां से बाहर नहीं आना, यानी आप ठिकाना, जो डेस्टिनेशन जिसको कहते हैं, यानी ऐसे नहीं कि गए और बाहर आ गए, गए और बाहर आ गए, ऐसे नहीं। जैसे हम स्कूल गए, कॉलेज गए, ऑफिस गए, कभी गए फिर निकले, फिर गए फिर निकले, वो नहीं। जहां पे इंसान ठहर जाए उसका ठिकाना, तो ये वो लोग हैं जो दुनिया में नाफरमानियां करते थे और कभी डरते नहीं थे कि अल्लाह ताला की पकड़ है। उन्होंने ऐसे समझा हुआ था कि खुली छुट्टी मिली हुई है, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जो मर्जी करो। तो ये वो लोग हैं कि अब जब इन्होंने अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखा, हदों में नहीं रखा, तो अब देखो इनको यहां बंद कर दिया गया जहन्नम में, ये इनका ठिकाना है, ये इनकी जेल है। लाबिथीना फीहा अहकाबा, हमेशा रहने वाले हैं इसमें आकाब तक। आकाब हुकुब की जमा है। हुकुब के बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा 80 ईयर्स का एक हुकुब है, बाद ने 70 ईयर्स लिखा, बाद ने 80 ईयर्स लिखा, 80 का एक हुकुब है। और यहां पे आकाब यानी कई हुकुब होंगे। अब वो कई हुकुब होंगे यानी इसका मतलब क्या कि कई 80 ईयर्स, एक के बाद एक टर्म स्टार्ट होगी। मगर याद रखिए, अगर आप ये समझते हैं कि ये 80 ईयर्स दुनिया वाले 80 ईयर्स हैं तो नहीं, जानते हैं ये दुनिया, ये जमीन आसमान तो खत्म हो गए होंगे, ये सूरज चांद खत्म हो गए। अब वहां के 80 ईयर्स की बात हो रही है, और जो वहां का एक दिन है वो जानते कितना बड़ा है? सूरह मारिद से हमें क्या पता चलता है? कहीं 50 अल्फा सना आता है, कहीं 1,000 साल ही सिर्फ आता है। तो वहां का एक दिन हमारे 1,000 साल के बराबर है, कम से कम 1,000 साल के। तो सोचें कि 80 साल, 80 ईयर्स का हर दिन 1,000 साल के बराबर कितना हो गया? 80 हजार नहीं हुआ, हर साल 1,000 के बराबर नहीं, हर दिन 1,000 के बराबर।
हर दिन। अल्लाह हु अकबर। इसके अंदर फिर आकाब है, फिर 1,000 साल नहीं है, 1 साल गुजरेगा, 80,000 साल, फिर 80,000 साल, फिर 80,000 साल। हुक्म नहीं कहा गया। और ये भी एक टॉर्चर है। कैसे? इसलिए कि अगर मिसाल के तौर पे किसी को सजा दी जाए और उसको कहा जाए, तुमने चलो ज्यादा नहीं, एक टांग पे तुमने खड़े रहना, 1 घंटे तक खड़े रहना तुमने एक टांग पे। जब 1 घंटा होने में 20 मिनट होंगे ना, तो उसको थोड़ा सा हौसला होता है, बस 20 मिनट रह गए, हाय बस 10 मिनट रह गए, हाय मैं थक गया हूँ, बस 5 मिनट रह गए, हाय बस 2 मिनट रह गए। लेकिन जब 1 मिनट रह जाए, तो उसको कहा जाए नहीं अब 1 और घंटा तुम इसी तरह खड़े रहो, जब वो दूसरा घंटा भी खत्म होने लगे, फिर कहा जाए 1 और घंटा अब इसी तरह तुम खड़े रहो, इसी तरह चलता रहे, तो कितना मेंटल टॉर्चर है। तो फिजिकल टॉर्चर तो है, इसके साथ ये मेंटल टॉर्चर, इंसान रोने लग जाए कि मुझे बताओ कि कब ये खत्म होगा, क्योंकि जब खत्म होने लगता है उसके बाद फिर एक और शुरू हो जाता। तो इस तरह उनकी एक टर्म खत्म होगी, दूसरी शुरू होगी, दूसरी खत्म होने लगती, तीसरी शुरू हो जाती, तीसरी खत्म होने लगती, चौथी, कई कई इस तरह के हजारों साल गुजरेंगे। ये है हुक्म। अल्लाह अकबर। तो जमाना दराज गुजर जाएगा। खालिदीना फीहा भी कहा जा सकता था, लेकिन खालिदीना कहा जाता तो शायद हमारे जहन में आता हमेशा रहेंगे, हमेशा कितना पता नहीं कितना, अब हमेशा का हमारे जहन में समझ नहीं ना आती, लेकिन जब कह दिया गया आकाब, तो अब समझ आई, अच्छा इतना ज्यादा लंबा अरसा, और इस तरह का कि जब खत्म होने लगे फिर शुरू हो जाए, जो टॉर्चर खत्म ही नहीं होके दे रहा। तो जो भी गुनाहों को करता है और उसके बाद तौबा किए बगैर दुनिया में से चला जाता है, सोच लें, इसके बाद एक हुक्म नहीं, दो नहीं, चार नहीं, आकाब। जितना उसका जुर्म होगा उसके मुताबिक उसके लिए आकाब होंगे। अब देख लें दुनिया में गुनाह की लज्जत कितनी देर की होगी, कितनी देर की बताएं खुद, कभी कभी तो सिर्फ चंद घंटे की होती है। चंद घंटे इंसान लोगों से तारीफ चाहता है, चंद घंटे ही लोगों के नजरों में जचना चाहता है, उसके लिए ख्वातीन बेपर्द होती हैं, चंद घंटे के लिए इंसान मजा करना चाहता है, उसके लिए नमाजें छोड़ देता है, चंद घंटे की जिंदगी इंसान गुजारता है, क्योंकि ये पूरी जिंदगी भी चंद घंटे की नजर आएगी, इस चंद घंटे की जिंदगी में ऐश से रहना चाहता है, और उसके लिए हराम खाता है, उसके लिए सूद लेता है, उसके लिए रिश्वत कमाता है, चंद घंटे की इंसान के मजे के लिए वो किस किस तरह के गुनाहों में पड़ता है, वो मजा खत्म हो गया। लेकिन सजा देखो आकाबा है, हजारों साल गुजरते जा रहे हैं, सजा नहीं खत्म हो रही, क्या वर्थ है, क्या ये वाकई इस काबिल है कि इंसान इसके लिए, इतनी थोड़े से मजे के लिए इतनी बड़ी सजा काटे। इंसान तो इस दुनिया की 80 साल की जिंदगी है ना उसके पास, 80 साल की मसलन बहुत भी हो गई, 80-90 हो गई, इतनी जिंदगी में भी उसको अगर 30-40 साल में कोई गम लग जाए, कभी कभी कोई ख्वातीन ऐसी होती हैं बेवा हो जाती हैं, तो कहते हैं फिर आप ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसी गुजरेगी। हालांकि अभी क्या कितने साल रह गए होंगे, 40-50-60 साल रह गए होंगे, बहुत ज्यादा, तो उसको हम कहते हैं पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजरेगी, ये गम की रात कैसे गुजरेगी, कभी जिंदगी के अंदर कोई परेशानी आई हो तो लगता है कि दिन और रात एक हो गए, ये कैसे वक्त गुजरेगा, वक्त ही नहीं गुजरता, जो वक्त है वैसे ही इतना लंबा है, वो कैसे गुजरे गुजर सकता है, वो कितना लंबा लगेगा उसको, क्योंकि मुसीबत की तो एक घड़ी भी इंसान के लिए मुद्दतों के बराबर लगती है।